जय विष्णुपाद परमंश परिव्रजाकाचार्य अष्टोत्तर षट श्रीमती शिशि भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की इस्कॉन संस्थापकाचार्य सेवियर ऑफ द होल्ड वर्ल्ड श्री प्रभुपाद की नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद की ऑल ग्लोरिस्ट असेंबल्ड डिवोटीज ऑल ग्लोरिस्ट असेंबल्ड डिवोटीज ऑल ग्लोरिस्ट असेंबल्ड डिवोटीज ऑल ग्लोरिस ऑल ग्लोरिस ऑल ग्लोरिस्ट गुरु एंड गौरांगा श्री प्रभुपाद की ओम नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ ज्ञानेनातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयमरूपा गदामयं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथाम्बितं तं सजीवम् साद्वैतं साद्वधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितंश्च हे कृष्णकरुणासिन्धुदीनबन्धुजगत्पते गोपेशगोपिकाकान्त राधाकान्त नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुधे देवी प्रणमामि हरि प्रिये वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा। तो एक समय की बात थी, एक बार एक कौवा जो अपने जिंदगी से पूरी तरह परेशान हो चुका था और इतना परेशान हो गया कि सभी लोग उनको कई लोग उनको पत्थर मारते थे तो कोई उनको गालियां देकर भगा देते थे। तो कौवा अपनी जिंदगी से हताश होकर उन्होंने यह निश्चय किया कि अब मैं आत्महत्या करूंगा। तो कौवे को अपने काले रंग से इतनी घृणा होती थी तो कौवा सोचा कि ये काला रंग से मैं परेशान हो चुका हूं। और खास कर उनको वो जब हंस को जब देखता था तो उन्हें बहुत ईर्ष्या होती थी, क्योंकि हंस जो कि पूरे सर से लेकर पैर तक केवल गोरा रंग था तो उस गोरे रंग को देखकर इस कौवे को बहुत ईर्ष्या होती थी। तो इन्होंने सोचा चलो अब मैं आत्महत्या करने जा रहा हूं, जाने के पहले एक बार उनको अंत में टाटा बाय बाय बोल के जाता हूं। तो आया हंस के पास कौवा उड़ता उड़ता और हंस को कौवा कहने लगा, वाह हंस क्या तुमने कलर पाया है। इतना कुदरत ने क्या तुम्हें रंग दिया है, ऐसा गोरा रंग। तो हंस कहने लगा, अरे कव्वे जी क्या बताऊं, मैं इस गोरे रंग से परेशान हूं, थोड़ा सा अगर धूल लग जाता, मिट्टी लग जाता तो पूरा दाग खुल के दिखता है, और दाग जाता भी नहीं है, इसलिए मैं सफेद रंग से परेशान हूं। क्या कुदरत ने क्या रंग दिया है, केवल एक ही रंग जो कि सर से लेकर पैर तक केवल गोरा, ये सफेद रंग से मैं परेशान हूं। वास्तविक कोई खुश नसीब है तो वह तोता, देखो कितना सुंदर रंग है, हरा हरा, वास्तविक रंग उसको कहा जाता है। तो कौवा सोचा शायद तोते से मिलना जरूरी है, तो कौवा उड़ता उड़ता फिर तोते के पास आया और तोते को कहने लगा, तोते जी क्या कुदरत ने आपको क्या रंग दिया है, लाजवाब, इतना सुंदर रंग हरा हरा। तो तोता कहने लगा, अरे इस रंग से मैं खुद परेशान हूं, अरे ये क्या रंग दिया है भगवान ने मुझे, हरा रंग और उसमें भी चोच के आगे लाल थोड़ा सा, वो भी किसी काम का नहीं। वास्तविक कोई खुश नसीब है तो ये मोर, एक दो रंग नहीं पूरा शरीर ही रंग से भरा हुआ है, कितने सारे रंग है, वास्तविक वो बहुत भाग्यशाली है। तो कौवा कहा, ये मोर कहाँ मिलेगा, मिलेगा जाइए जू में देख लो, जू पार्क में कहीं होगा। तो कौवा उड़ता उड़ता जू में आया, पार्क में देखा मोर पिंजरे के अंदर, और इर्द गिर्द सभी लोग जोर जोर से तालियां बजा रहे हैं, मोर का वाह वाह कर रहे हैं। और कौवा सोचने लगा, वाकई कितना खुश नसीब है, एक मैं हूं कि लोग मुझे देख के गालियां देता है, पत्थर मार के भगाता है, लेकिन इनके लिए तो तालियों की गर्जना भरस रही है। जब सब चले गए तो कौवा प्राइवेटली आया मोर के पास बातें करने, तो कौवा कहने लगा मोर को, वाह मोर क्या सुंदर रंग पाया है, ऐसे रंग जो कि पूरे दुनिया को मोहित कर देता है। तो मोर कहने लगा, तुम वाकई मुझे भाग्यशाली कह रहे हो, पहला एक लिस्ट बनाओ, क्या इस पार्क में कितने सारे पक्षी आए, सारे पक्षी का नाम नोट करके लाओ, फिर मैं बताता हूं। तो एक कौवा गया, हरेक पिंजरे में हरेक पक्षी का नाम नोट करके लाया, और सबका नाम नोट करके लाकर उन्होंने मोर को दिखाया। तो मोर को दिखाया तो मोर ने पूछा, अच्छा इसमें कहीं कौवा है क्या, कौवा तो नहीं है। तो मोर कहने लगा, मैं वही पूछ रहा हूं, कौवा क्यों नहीं, कौवा जब आजाद होकर जब घूमता है तो मुझे कौवे को देख के ईर्ष्या होती है कि इतना आजाद क्यों घूम रहा है, और एक मैं हूं कि भगवान ने मुझे ऐसा रंग दे दिया कि पिंजरे के अंदर बंद करके रख दिया है, वाकई कोई खुश नसीब है तो एक कौवा। तो कौवा ने अपना सुसाइड का प्लानिंग ही कैंसिल कर दिया। तो वैसे समाज में हर व्यक्ति अपनी समस्या से परेशान है, तो कभी सोचता है कि बगल वाला खुश है, लेकिन बगल वाला सोचता है कि यह व्यक्ति खुश है, लेकिन हर व्यक्ति अपनी समस्याओं से इतना परेशान है और सोचता है कि कुदरत ने केवल इतना सारा दुख मेरे झोली में ही डाला है, पूरे संसार का दुख भगवान ने मुझे ही चुना है लगता है, और मेरे झोली में ऐसे दुख को भंडार डाल दिए है। तो वैसे हर व्यक्ति की देखने की जो नजरिया है अलग अलग प्रकार का है, क्योंकि अलग अलग प्रकार से दृष्टि होने के कारण हर व्यक्ति समझ नहीं पाता है कि वास्तविक जीवन का दृष्टि क्या है। इसलिए भगवद गीता में कहा गया है मुख्यतः दो प्रकार की दृष्टि है, और आज हमारी चर्चा इसी पर है। इन दृष्टियों को हम छह विभाग में चर्चा करेंगे अलग अलग प्रकार से, कि कैसे व्यक्ति की दृष्टि होनी चाहिए, कैसे उनके देखने की नजरिया होनी चाहिए इस संसार को। तो उन छह नजरिया को हम बारी बारी से नजर देंगे। तो मुख्यतः भगवत गीता में दो प्रकार के नजरिया के विषय में चर्चा किया है, एक विमूढ़ एक ज्ञानी। उक्रमंतान स्थितान्वापि भुंजानावा गुणान्विप्तम विमूढ़ानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा। उक्रमंतान स्थितान्वापि भुंजानावा गुणान्विप्तम विमूढ़ानानुपश्यन्ति। विमूढ़ व्यक्ति कभी वस्तुओं को ठीक से देख ही नहीं पाता है, पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा। लेकिन जो ज्ञानी व्यक्ति होता है वह हर वस्तु को ठीक ठीक देखता है, क्योंकि उसके अंदर ज्ञान का दृष्टि है। तो जिसके पास जैसी भावना होती है वैसी भावनाओं से वह हर वस्तुओं को देखता है। तो निर्भर होता है कि उसकी भावना कैसी है, और उसकी भावना निर्भर होती है उसके ज्ञान के आधार पर। जैसे एक डॉक्टर के पास अगर कोई मरीज जाता है तो डॉक्टर को जब मरीज बताता है अपने तकलीफ को, तो डॉक्टर पकड़ लेता है कि इसके बीमारी का मूल जड़ क्या है। तो डॉक्टर के पास ऐसी दृष्टि है कि वह शरीर को देखकर भी शरीर के अंदर एक्सरे निकालता है। वही दृष्टि हमारे पास भी है, लेकिन डॉक्टर की तरह ज्ञान नहीं है। इसलिए मरीज को देखने के बाद यहां तक कि हम स्वयं जब बीमार होते तो हमें अपने अंदर के एक्सरे का सिस्टम निकालने नहीं आता, क्योंकि वो ज्ञान चक्षु नहीं है। इसलिए ज्ञान के आधार पर व्यक्ति की दृष्टि टिकी है। एक ही वस्तु को हर व्यक्ति अलग अलग दृष्टि से देखता है। जैसे चाणक्य पंडित कहते हैं, अपने श्लोक में वर्णन करते हुए कहते हैं, एक एक पदार्थस्तु त्रिविधा भवति विक्षिता, पुंसाम कामी भी मांस योगी भी कामी भी स्वभि। एक एक पदार्थस्तु, एक ही पदार्थ को तीन लोग विभिन्न दृष्टियों से देखते हैं। क्या क्या, किसको? तो कहते हैं एक सड़क से एक स्त्री जा रही है, तो उस स्त्री को कितने लोग देख रहे? तीन लोग। तो कहते हैं पुंसाम, पहला जो व्यक्ति है वो योगी भी। तो योगी भी जब उस व्यक्ति को, उस महिला को जब देखते हैं तो वो उसी दृष्टि से देखते हैं कि ये तो पुनः उसी से, उसी का मल से बना हुआ, जो कपित वायु से बना हुआ ये जो ढांचा ये शरीर है पुंसा, तो वो उस दृष्टि से देखता है। कामी भी, जब कामी जब देखता है तो वो सोचता है कि हाँ यहां मेरा विषय वस्तु जा रहा है। और स्वभि, यानी कि कुत्ता जब देखता है तो कुत्ता देखता तो ये दृष्टि से देखता मेरा ब्रेकफास्ट जा रहा है, तो यहां पर मेरा मांस का टुकड़ा जा रहा है जो कि मेरा भोजन है। एक ही वस्तु को तीन लोग अलग अलग दृष्टि से देखते हैं। जैसे उदाहरण के तौर से एक सुंदर एक्ट्रेस है, उस एक्ट्रेस को एक युवक लड़का जब देखता है तो उनकी सुंदरता को देखता है, लेकिन उसी एक्ट्रेस को जब एक मच्छर देखता है तो क्या हियर इज माय ब्लड बैंक, तो यहां पर मेरा भोजन है। उसी वस्तु को देखने की नजरिया बदल जाती है। तो श्रीमद् भागवतम में अलग अलग प्रकार के नजरियाओं के विषय में सुंदर चर्चा आती है दसम स्कंद में। उस समय की यह घटना है कि जब भगवान कृष्ण और बलराम जी जब कंस को मारने के लिए मथुरा में प्रवेश करते हैं, उसी समय कंस ने बहुत बड़े हिष्ट पुष्ट सुडेल व्यक्ति को उनके साथ कुश्ती में लगा दिया, मल्ला नाम। तो जब उनके साथ युद्ध के लिए जब मैदान में उतरे, उस क्षण भगवान कृष्ण को कई लोग अलग अलग दृष्टि से देख रहे थे। तो क्या कहते हैं सुखदेव गोस्वामी, तो बहुत सुंदर वर्णन करते हैं, मल्लानम असनिर निर नरपतो स्त्रीनाम स्मरमूर्तिमान गोपानाम स्वजनो सातम शिति भुजयाम शाश्वत स्व पित्र शिशु मृत्युर भोज पतेर विराट विदुनाम तत्त्वम परम योगिनाम वृष्णीनाम पर देवती विदितो रंगम गता स अग्रज। तो कहते हैं मल्लानाम असनीर, जो जितने भी कुश्ती लड़ने वाले थे भगवान कृष्ण के साथ, तो कृष्ण को ऐसे, कृष्ण को जब देख रहा था तो कृष्ण को देखकर उन्हें ऐसे प्रतीत हो रहा था कि जैसे कोई बिजली चमक रही है। तो असनीर, तो बिजली के समान देख रहे थे कृष्ण को, कृष्ण और बलराम को। तो कुछ लोग निरनाम नरवरा, तो कुछ पुरुष लोग कृष्ण को जब देख रहे थे तो कह रहे थे हाँ हियर इज अ कंप्लीट मैन, ये पूर्ण पुरुषोत्तम है, यही वास्तविक में पूर्ण पुरुषोत्तम है। और स्त्री नाम स्मरमूर्तिमान, तो स्त्रियां जब कृष्ण को देख रहे थे तो किस नजरिया से देख रहे थे, इस नजर से देख रहे थे कि यहां पर कामदेव को मोहित करने वाला मूर्तिमान स्वरूप कृष्ण खड़े हैं। गोपानम स्वजनम शतामशिति भुजयाम, तो गोपगण जब उन्हें देख रहे थे तो किस नजर से देख रहे थे, अपने संबंधी के रूप में देख रहे थे। और शतामशिति भुजयाम शाश्वत, जितने भी पापी राजा थे वो जब कृष्ण को देख रहे थे तो ऐसे प्रतीत हो रहा था कि ये मुझे दंड देने वाला पात्र है, ये वास्तविक मुझे दंड देगा, ऐसे नजरिया से देख रहे थे। स्वपित्र शिशु, तो जितने भी बुजुर्ग लोग थे वो उनको शिशु के रूप में देख रहे थे। मृत्युर भोज पतेर विराट, कंस जो था वो कृष्ण को जब देख रहा था तो अपने मृत्यु के नजर में देख रहा था। और विराट विदुषाम, और जो कम बुद्धि वाला था वो केवल विराट रूप के, कृष्ण को केवल विराट रूप में दर्शन कर रहा था। तत्वम परम योगिनाम, तो जितने भी योगी थे वो सारे योगीगण कृष्ण को जब देख रहे थे तो इस नजर से देख रहे थे कि ये पूरे सिद्धांत का मूल स्रोत है। और फिर कहते हैं वृष्णीनाम पर देविता, जितने भी वृष्णिवंशी थे उन लोग देख रहे थे तो केवल इस नजर से देख रहे थे कि यहां मेरे आराधीन आराध्य पूजनीय विग्रह वह है कृष्ण। इस प्रकार हर व्यक्ति का देखने का नजर भिन्न भिन्न था। तो देखने की नजर किस पर निर्भर है, हमारे भावनाओं पर, हमारी भावना किस प्रकार है। इसलिए कृष्ण भावनामृत संघ में भावनाओं को ज्यादा जोर दिया गया है, ना कि उनके कार्यों को। तो कई लोगों के मन में यह विचार आता है भक्त बनना यानी कि हमारे व्यवसाय को, हमारे कार्यों को बदल देना है। नहीं, भगवद गीता सुनने के पहले अर्जुन ग्रस्ती था, भगवद गीता सुनने के बाद भी अर्जुन ग्रस्ती था या क्षत्रिय ही था। उन्होंने अपने कार्यों को नहीं बदला कि भगवद गीता सुन लिया तो अर्जुन ने ये नहीं कहा चलो अब मैं सन्यास लूंगा। पूरी भगवद गीता सुनने के बाद अर्जुन ने क्या कहा, नष्ट मोह स्मृति लब्धा तत्प्रसादमय उचित स्थित स्मिगत संदेह करिष्य वचनम तवा, हे कृष्ण मेरा मोह सब नष्ट हो चुका है, अब आप जो बोलो मैं करने को तैयार हूं। तो अर्जुन ने अपनी भावनाओं को बदलकर उन्होंने युद्ध किया। तो वैसी भावनाओं को ज्यादा जोर दिया गया है, तो क्योंकि भावनाओं के ऊपर निर्भर है हमारी दृष्टियां। तो छह प्रकार की दृष्टि है, इसलिए प्रभुपाद इनको विभिन्न प्रकार से चर्चा करते हैं। ये छह प्रकार की दृष्टियां, पहला क्या, सींग ओनली बैड, देखते हैं तो केवल बुरे वस्तु को ही देखते हैं। तो देख रहे हैं लेकिन क्या, गलत चीज को देख रहे हैं। तो किसी को भी देखते हैं तो केवल गलत ही वस्तु देखते हैं उसके अंदर। जैसे एक बार श्री प्रभुपाद जी के पास एक व्यक्ति आया और वो कहने लगे, स्वामी जी हमने सुना है कि प्रभु रामचंद्र जी तो वन में मच्छी खाते थे। तो प्रभुपाद ने कहा उसमें क्या हुआ, वो तो तुम्हें भी खा सकते हैं। तो इतना हैरान हो गया, स्वामी जी मुझे, हाँ क्यों नहीं, तुम्हें नहीं, विराट रूप में तो उन्होंने सबको, पूरी सेनाओं को कच्चा चबा दिया था। तो भगवान के साथ कभी कंपटीशन मत करना। तो वैसे उनकी नजर तो केवल उसी में थी। तो जो व्यक्ति जैसे भावना वाला होता है वैसा ही वस्तु दूसरे को देखता है। एक बार कृष्ण ने युधिष्ठिर महाराज और दुर्योधन को पास बुलाया और कहा, युधिष्ठिर महाराज को कहा कि तुम्हारे दरबार में जाओ, दरबार में जाकर ढूंढो, कोई अगर तुमसे बुरा इंसान है तो उसे पकड़ के लाओ। और दुर्योधन को कहा, जाओ दुर्योधन, जाओ तुम दरबार में ढूंढ के लाओ कि तुमसे कोई अच्छा इंसान है तो उसे खोज के लाओ। तो दोनों जन गए, पूरा सूर्यास्त हो गया, दोनों जन खाली आता है। युधिष्ठिर महाराज को पूछा कृष्ण ने, मिला? तो युधिष्ठिर महाराज कहने लगे, हे केशव, मैंने पूरा राज्य ढूंढ लिया लेकिन मुझसे तो बुरा व्यक्ति कोई दिखाई नहीं दे रहा है, सबसे ज्यादा बुरा व्यक्ति मैं ही हूं। तो कृष्ण ने दुर्योधन को पूछा, दुर्योधन तुम्हारा क्या हालचाल है? दुर्योधन कहने लगा, क्या बताऊं केशव, मैंने सब छान लिया लेकिन मुझे एक व्यक्ति ढंग का नहीं दिखता है, सब में कुछ ना कुछ गड़बड़ है और इसलिए मुझे भी कोई नहीं मिला। और क्योंकि दोनों जैसा था वैसा ही दूसरे को देखे। तो हम जैसे रहते हैं तो हमारी जैसी विचार रहती है, हम उसी विचार से दूसरे वस्तुओं को, दूसरे व्यक्तियों को देखते हैं। ऐसे शिशुपाल ने, उन्होंने कृष्ण के अंदर 100 गलतियों को ढूंढा। वो जो कृष्ण, जो कि जिनके अंदर रंच मात्र भी टूटिया नहीं है, वैसे कृष्ण के अंदर 100 गलतियों को ढूंढने के लिए सक्षम हो गए शिशुपाल, तो हमारी क्या स्थिति है? तो वैसे उनके अंदर केवल त्रुटियों को ढूंढने की दृष्टि थी। तो ये पहला नजर है, वो क्या है, सींग ओनली बैड, केवल गलत वस्तुओं को ही देखना। दूसरा सींग गुड एंड बैड बट एक्सेप्ट ओनली बैड, तो वो दोनों वस्तु को देखता है, अच्छे और बुरे को, दोनों को, लेकिन उन दोनों में वो केवल बुरे वस्तु को ही चुनता है। तो कभी कभी भक्त के अंदर दोनों गुण होते हैं, अच्छे गुण होते हैं, बुरे गुण भी होते हैं, लेकिन वो केवल उस भक्त के अंदर केवल बुरे गुण को ही ज्यादा जोर देता है देखने में। एक बार जब दक्ष प्रजापति, उन्होंने तपस्या किया, जिस तपस्या के फलस्वरूप भगवान ने उनको आशीर्वाद दिया, जिस आशीर्वाद से उन्होंने ग्रस्त आश्रम में प्रवेश कर उन्होंने संतान को उत्पन्न किया, 10,000 संतान को उत्पन्न कर उन्होंने उनको तपस्या के लिए भेज दिया, क्योंकि अब ग्रस्त आश्रम में जाना है तो पहले तपस्या करके आओ। तो ग्रस्त आश्रम में जाने के पहले तपस्या की आवश्यकता पड़ती है। तो पूरे 10,000 पुत्र गए तपस्या करने के लिए, तो सब युवा अवस्था में थे, तपस्या में मगन थे। उसी समय वहां पर नारद मुनि घूमता फिरता, वहां पर उनका नजर पड़ गया। तो नारद मुनि ने देखा, अरे एक साथ सब यहीं पर ही है, पंडाल लगाने की कोई जरूरत ही नहीं, यही प्रोग्राम करते हैं। उन्होंने वहीं पर ही युद्ध लेक्चर शुरू कर दिया। तो नारद मुनि हमारे पहले आचार्य है युद्ध लेक्चर शुरू करने के। उन्होंने ऐसा लेक्चर दिया कि पहला ही लेक्चर सक्सेसफुल, और सबको ऐसा प्रवचन दिया कि काहे, किस लिए तुम ग्रस्त आश्रम में जा रहे हो, ये सारे ग्रस्त आश्रम को छोड़ो और ब्रह्मचारी संन्यास ले लो। सब सहमत हो गए और सारे के सारे संन्यास ले लिया। अब ये खबर मिला दक्ष प्रजापति को, ओहो, पूरे 10,000 भक्त, जितने भी मेरे लड़के थे, पूरे 10,000 संन्यास ले लिया। अभी किसी ग्रस्त व्यक्ति का एक लड़का अगर भक्त बनता है, ब्रह्मचारी बनता है, तो उनके हृदय में कितनी बीतती है, यो हुए चला गया। लेकिन यहां एक दो की बात नहीं हो रही है, यहां हजारों की संख्या में। तो दक्ष प्रजापति के हृदय में कितना भयंकर पीड़ा चलता होगा, फिर भी दक्ष प्रजापति ने विचार किया ठीक है कोई बात नहीं, हम होंगे कामयाब एक दिन। उन्होंने 1000 और उत्पन्न किया और 1000 और उत्पन्न करके उनको भी भेज दिया तपस्या के लिए, और वो सब लोग भी आए तपस्या के लिए उसी स्थान पर जहां पर उनके बड़े भाई गए थे। तो वहां पर फिर से नारद मुनि का नजर पड़ गया, तो नारद मुनि ने फिर से देखा और उनको भी प्रवचन शुरू कर दिया और उनको शॉर्टकट में प्रवचन दिया, क्या तुम्हारे बड़े भाई ने जो किया वो छोटे भाई को करना उनका कर्तव्य बनता है। और उन लोग भी तैयार हो गए और उन लोग भी संन्यास ले लिया। तो दक्ष प्रजापति का पारा चढ़ गया, ये क्या हो रहा है। तो श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, दक्षा वास वेरी एक्सपर्ट इन प्रोड्यूसिंग चिल्ड्रन एंड नारद मुनि वास वेरी एक्सपर्ट इन डिलीवरिंग देम। दक्ष जो था वो बहुत ही निपुण था संतान को उत्पन्न करने में, और नारद मुनि बहुत ही निपुण था वो सारे का सारे लोगों का उद्धार करने में। और वैसे दोनों के बीच में बड़ा कंपटीशन चल रहा था। नारद मुनि ने सोचा कि ये मूल जो जड़ है वो दक्ष है, दक्ष को ही मैं संन्यास दे दूंगा तो सारे समस्या ही खत्म, ना रहेगी बास न बजी की बांसुरी। सीधे आए सीधे दक्ष प्रजापति के पास उनका उद्धार करने। अब यहां पर दक्ष प्रजापति का पारा ऐसा चढ़ गया, इतनी उन्होंने इतने गालियां दिया नारद मुनि को, तुम सन्यासी को तो कुछ काम धंधा नहीं है, कुछ जीवन में कुछ कर नहीं पाए तो ये भगवा कपड़ा पहन के घूम रहे हैं। तो कभी कभी बाहर के लोग हमें भी देखकर विचार करते हैं, बेचारा शायद जीवन से थक गया था इसलिए जल्दी मंदिर चला गया। तो कभी कभी कुछ लोग सोचते हैं, पता नहीं जीवन में किसी ने बहुत बड़ा धोखा दिया है। तो लोग सोचते हैं, वैसे दक्ष प्रजापति की नजरिया थी, वो केवल नारद मुनि के अंदर वैसी दृष्टि देख रहे थे और कह रहे थे कि तुम लोग केवल रबर स्टैंप साधु हो, केवल कंठी माला पहन के तिलक पहन कर धोती कुर्ता पहन कर तुम लोग भटक रहे हो, तुम्हें ये नहीं पता कि वास्तविक संन्यास किसको दिया जाता है। जब तक गृहस्थ आश्रम में जाकर अनुभूति को प्राप्त नहीं करेगा तब तक वो संन्यास ले ही नहीं सकता। ऐसे उन्होंने नारद मुनि की इतनी निंदा की और साथ में श्राप भी दे दिया कि तुम एक क्षण कहीं नहीं टिकोगे, भटकते रहोगे, और नारद मुनि के लिए आशीर्वाद में हो गया। दक्ष प्रजापति ने नारद मुनि के अंदर इतने सद्गुण भरे हैं, उन्होंने केवल उनके अंदर केवल त्रुटियों को देखा। तो वैसे भक्तों की नजरिया होती है, तो जब शुरुआत में भक्तों भक्ति में जब आते हैं तो उस भक्ति में आने के कारण हम केवल दूसरे भक्तों के अंदर, शुरू शुरू में तो ऐसे लगता है कि सारे भक्त शुद्ध भक्त हैं, जैसे जैसे कदम बढ़ने लगता है अच्छा इसके अंदर ऐसी बुराई है, ओ ये प्रॉब्लम है इसमें, फिर एक एक त्रुटियों को ढूंढने लगता है। तो कभी कह भी दिया जाए कोई दूसरा व्यक्ति, अरे बहुत अच्छा भक्त है, नहीं नहीं उसका परम गुह्य ज्ञान मेरे पास है, उसका एक पिछला चैप्टर भी है मेरे पास। तो वैसे व्यक्ति केवल उसके बुराइयों को ही देखता है। जब श्रील प्रभुपाद के पास जब श्रील प्रभुपाद जब प्रचार कर रहे थे उन दिनों यह स्लोगन बहुत प्रसिद्ध हो गया था, दम मारो दम बोलो सुबह शाम हरे कृष्ण हरे राम। तो श्रील प्रभुपाद के जो शिष्य थे गिरिराज महाराज, उन्होंने ये जब सुना तो उन्होंने कहा कि बस प्रवचन जाकर ये जो पिक्चर है तो देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें बताया गया हरे कृष्ण हरे राम का नाम जप किया। तो गिरिराज महाराज ने वहां पर किसी व्यक्ति से उनका उस पिक्चर के अर्थ के विषय में कहा पूछा, तो इन्होंने कहा बढ़िया पिक्चर है। तो गया अंदर देखने, जैसे अंदर गए गिरिराज महाराज तो उन्होंने क्या देखा कि सभी लोग गांजा भी पी रहे और दम मारो दम भी कर रहे हैं और सुबह शाम बोल रहे हरे कृष्ण हरे राम। तो गिरिराज महाराज सोचने लगे शायद तात्पर्य में कुछ गलती हो गया है, बाहर में कुछ गलत सुन लिया। वापस बाहर आए और प्रभुपाद जी के पास पहला उन्होंने रिपोर्ट किया, प्रभुपाद ऐसे ऐसे चल रहा है। तो प्रभुपाद ने कहा नो प्रॉब्लम, इन लोग दम मार मार के थक जाएंगे, केवल हरे कृष्णा रह जाएगा। तो आज भी लोगों के कुछ ऐसे अज्ञान व्यक्ति हैं जिनके मन में भ्रांत चलता रहता है कि हरे कृष्णा वाले करते क्या है, सुबह से शाम तक मंदिर में ही रहते हैं। तो उन लोग आश्चर्यजनक हो जाते कि ऐसा यहां हो क्या रहा है। जब शुरुआत में मैं जब हरे कृष्ण आंदोलन में आया करता था तो मेरे पिताजी भी कहते थे, तो जब मैं 2 साल ज्वाइंट करने के बाद फुल टाइम ज्वाइंट करने के बाद मैं अपने पिता से मिलने गया तो मेरे पिता ने पूछा क्या अभी ड्रग्स के धंधे में लगाया है कि नहीं। ड्रग्स वहां तो चाय पीना मना, ड्रग्स क्या बोल रहे हो। तो बोला अच्छा अभी जूनियर है ना, सीनियर होगा तो पता लगेगा। तो वो पूरी तरह कन्वर्ट है कि हरे कृष्णा में होता है तो केवल गांजा होता है, लेकिन उनको ये इस प्रकार लोगों को ये ज्ञान नहीं प्राप्त हो रहा है कि वास्तविकता ये जो इसके अंदर अच्छाई गुण को नहीं देख पा रहे, केवल ऊपर ही ऊपर बुरे गुण को खोज रहे हैं। तो वैसे देख रहे दोनों गुण को देख रहे, लेकिन दोनों गुण को देखने के बाद भी उसके अंदर भी केवल त्रुटियों को ढूंढना। जैसे एक फूल को जब एक युवक लड़का देखता है तो एक लड़का जब देखता है उस फूल को तो देखता है क्या कुदरत ने क्या सृष्टि रचना किया है। फूल तो है लेकिन उसमें इतने सारे कांटे। लेकिन उसी फूल को जब दूसरा व्यक्ति देखता है तो कहता है वाह भगवान ने कितना सुंदर सृष्टि रचना किया, इतने सारे कांटे तो है लेकिन उसमें भी एक सुंदर गुलाब। तो उनकी देखने की जो नजरिया है वो बदल जाती है। बताया जाता है कि एक बार एक व्यक्ति चीकू के पेड़ के नीचे बैठा था, बड़ा आराम कर रहा था, थका हुआ था तो उनकी छाया में बैठ के थकान ले रहा था और सामने उन्होंने देखा कि कुछ कलिंगर के फल भी है। तो विचार कर रहा था कुदरत को सृष्टि रचना करने नहीं आता, अरे बड़े बड़े फल को ऊपर रहना चाहिए, छोटे छोटे फल को नीचे, क्या सृष्टि रचना किया। बड़े बड़े फल नीचे और छोटे छोटे फल ऊपर लटक रहे, कमाल है। ऐसे कहते कहते उनकी आंख लग गई और जब आंख लग गई तो अचानक उनके सर के माथे पर एक चीकू गिर पड़ा। तो आंख खोला तो देखा चीकू है। फिर विचार किया बाकी भगवान ने सोच समझ के रचना किया है। अगर इस चीकू के बदले अगर कलिंगर होता तो मेरा सर भी कलिंगर जैसा लाल हो जाता। तो वैसे भगवान के हर सृष्टि को ठीक से देखने की नजरिया यह है। तो तीसरा क्या है, टू सी लिटिल बैड बट टू मैग्निफाई लाइक एनीथिंग। थोड़े से गलतियों को देखना लेकिन उसको बड़ा चढ़ाकर बोलना, थोड़ी सी गलती है लेकिन उसके प्रति लंबा चौड़ा विस्तार से उन पर चर्चा करना। एक समय जब विश्वरूप के पास जब इंद्र आए अपने देवताओं के सहित और उन्होंने आकर उनसे मित्रता का भेंट किया और मित्रता के रूप में उन्होंने स्वीकार करते हुए इंद्र ने कहा विश्वरूप को कि हमें देवताओं के लिए यज्ञ करते हुए हमें शक्ति प्रदान करो। तो विश्वरूप के पास 3 मुंडी थी तो विश्वरूप ने उनको सहमत करते हुए उन्होंने देवताओं के लिए यज्ञ किया। एक मुख से असुरों के लिए यज्ञ अर्पण करता था, बाकी 2 मुख से देवताओं के लिए, क्योंकि विश्वरूप की जो माता जो थी रचना वो असुर कुल की थी और पिता त्वष्टा था जो कि देवताओं के कुल का था, इसलिए एक झुकाव उनका असुर के प्रति भी था। तो यहां पर इंद्र को जब एक खबर मिला कि ये असुरों के लिए भी यज्ञ दे रहा है, तो इंद्र ने इतनी छोटी सी गलती को क्या किया कि उनके तीनों सर को अधर से अलग कर दिया। और वैसे छोटी सी गलती को लेकर बड़ा चढ़ा कर कहना, तो कभी 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 कुछ भक्त लोग ये भी विचार करते हैं, हाँ 5 साल पहले इन्होंने मुझे प्रसाद नहीं दिया था, देख लूंगा। तो जीवन भर तक याद रखते हैं, एक छोटी सी गलती को बड़े विस्तार से चर्चा करना, यह है तीसरे प्रकार की त्रुटियां। चौथा, टू सी गुड एंड बैड बट प्रिफर टू एक्सेप्ट गुड, अच्छे और बुरे गुण को दोनों देखना लेकिन उसमें भी अच्छे गुणों को ही स्वीकारना, ये अब थोड़ा सकारात्मक दृष्टि है। जैसे उस समय की बात थी कि जब धृतराष्ट्र के जितने भी 100 पुत्र थे उनके जीते जी मारे गए, तब उस समय विदुर जी को जब संदेश मिला तो विदुर जी उनके पास आए उनको शिक्षा देने के लिए, और वो आकर क्या कहते हैं, अंधपुरैव वदिरो मंद प्राज्ञा च संप्रतम वृषिण दंड बंधाग्नि सराग कप्पम उद्भवम। वह कहने लगे, ये धृतराष्ट्र तुम्हारी क्या स्थिति हो चुकी है, तुम पहले से तो जन्म से अंधे ही हो, पुरैव तुम तो ऐसी स्थिति हो चुकी है कि वदिरो तुम्हें सुनाई कम पड़ रहा है, तुम्हारे जितने भी दांत है वो सारे के सारे निकल पड़े हैं, मंद प्राज्ञा तुम्हारी जितनी भी स्मरण शक्ति खो चुकी है, अभी भी मौका है, शीघ्रताम इसी समय तुम क्या करो, इस महल को छोड़कर तपस्या में लग जाओ। तो विदुर जी का पता था कि उनके भाई को उनके प्रति एक कोमलपन है, और उस कोमलपन को लेकर यहां पर विदुर जी ने धृतराष्ट्र को आके प्रवचन दिया, उनको शिक्षा दी, जिस शिक्षा को लेकर धृतराष्ट्र ने अपने जीवन में उतार कर उन्होंने अंतिम समय पर मोक्ष के गति की ओर अग्रसर हुए। तो विदुर जी ने धृतराष्ट्र के अंदर इस अच्छे गुण को उन्होंने खोज कर निकाला, ऐसे विदुर जी के अंदर इस प्रकार सद्गुण थे जो कि धृतराष्ट्र के अंदर बुराई के गुणों की कमी नहीं थी, इतने सारे बुराई थे लेकिन उस बुराई में भी उन्होंने अच्छे गुण को देखा। जब श्रील प्रभुपाद जब लेक्चर दे रहे थे तब उसी समय कुछ मायावादी लोग आ गए, तो मायावादी लोग आकर उन्होंने मायावाद का पैम्पलेट बांटने लगे, तो मायावाद का पैम्पलेट तो अब सबको दे रहे, प्रभुपाद कुछ बोल ही नहीं रहे, सबको बांट दिया और बांट के चले गए। तो सब हैरान थे कि स्वामी प्रभुपाद कुछ बोले क्यों नहीं, तो प्रभुपाद ने कहा सारे पैम्पलेट को इकट्ठा करके रख लो, तो सारे के सारे पैम्पलेट इकट्ठा करके रख लिया, और जब प्रवचन जब खत्म हो गया तो प्रभुपाद ने कहा आप सबको बांटो और उसके ऊपर प्रसाद भी दे देना। तो वो जो पैम्पलेट था उस पैम्पलेट को उपयोग किया किसके लिए, प्रसाद प्लेट के लिए। तो यहां पर प्रभुपाद ने उस मायावाद के दिए हुए जो पेपर है उनको भी सेवा में लगा दिया। एक बार एक मायावादी आया और कहने लगे, स्वामी जी तुमने तो भगवद गीता में चारों तरफ कृष्ण 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 भर दिया है, देखो 6th अध्याय जो कि ध्यान योग है उसके अंदर कृष्ण भावनामृत लिख दिया है, और ये देखो 9वां अध्याय उसमें भी कृष्ण कृष्ण लिख दिया है। तो प्रभुपाद कहने लगे और कहां लिखा है, और ये देखो 12वां अध्याय जिसके अंदर तो कृष्ण का भंडार है, कृष्ण ही लिख दिए हो, अच्छा और कौन सा अध्याय, वो 18वें अध्याय में तो पूछो मत, वहां पर भी आपने जगह जगह पर कृष्ण भावनामृत ये क्या है। और ये घंटे तक वो बोलते रहा और फिर बोलकर वो चला गया। तो शिष्यगण ने पूछा, प्रभुपाद आप तो हमेशा मायावादियों के सामने तो नरसिंह की तरह गर्जना करते, आज क्या बात है, आज प्रहलाद महाराज की तरह विनम्र हो गया। तो प्रभुपाद कहने लगे, देखा नहीं, एक घंटे तक कृष्ण कृष्ण बोल रहा था। तो उन्होंने उनके अंदर भी उस गुण को देखा, तो उस अच्छे गुण को ही देखा। तो ये चौथे प्रकार के दृष्टि हैं। पांचवे प्रकार की दृष्टि, सी ओनली गुड, केवल देख रहे हैं तो केवल अच्छे गुणों को देख रहे हैं। जब उस समय दुर्योधन को जब गंधर्व लोग ने कब्जा कर लिए थे, तो दुर्योधन को मारने ही वाले थे, तो दुर्योधन की जितने सेना थे वो सेना दौड़ते दौड़ते युधिष्ठ महाराज तक पहुंचे। जय श्री श्री राधा गिरधारी भगवान की, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई की। तो दौड़ते हुए सभी लोग युधिष्ठ महाराज के पास जाकर संदेश दिए कि दुर्योधन अब कैद है, उसकी मृत्यु कभी भी हो सकती है, आप लोग आकर उनको रक्षा करो। तो युधिष्ठ महाराज ने अर्जुन के तरफ देखा, अर्जुन, तो भीम ने कहा बहुत अच्छा हो गया, मरने के बाद आना चाहिए तो संदेश देने, इतना जल्दी क्यों आया। तो युधिष्ठ महाराज ने कहा, नहीं भीम, ये हमारा भाई है, तो भले ही परिवार के अंदर आपस में झगड़ा भले ही हो, लेकिन जब बाहर से कुछ आक्रमण हो रहा है तो हम सबको एक हो जाना चाहिए। तो भीम ने कहा, हमेशा युधिष्ठ महाराज भी बीच में ही आ जाता है। और इतने में अर्जुन को कहा, अर्जुन जाओ जाके रिहा करो उन्हें। तो उस समय युधिष्ठ महाराज दुर्योधन के अंदर एक सद्गुण को देखा, और वो क्या था, उनके भाई है। तो वैसे युधिष्ठ महाराज की दृष्टि थी। एक बार श्रील प्रभुपाद के एक शिष्य थे, विदेशी शिष्य, जब प्रभुपाद ने उस महिला विदेशी शिष्य को जब भारत में लेकर आए, तो भारत दिल्ली में एक लाइफ मेंबर था, तो बड़ा विद्वान पंडित जैसे था, संस्कृत को जानता था। तो प्रभुपाद कहने लगे, यहां पर यह विदेशी महिला है लेकिन ईशोपनिषद के सारे श्लोक को जानती है। अब इनको केवल ईशोपनिषद के प्रथम पांच श्लोक ही आते थे, उसके बाद श्लोक ही नहीं आते थे। तो प्रभुपाद ने कहा, ये सारे श्लोक को जानती है। और प्रभुपाद ने कहा, बोलो, बोलना शुरू करो। तो उन्होंने बोलना शुरू किया, पहला बोला, दूसरा बोला, तीसरा बोला, चौथा बोला, पांचवा बोला। प्रभुपाद ने बोला, बस करो। तो बोला, बढ़िया बोल रही है। तो इन्होंने कहा, स्वामी जी ठीक है, श्लोका तो बोल रहे हैं, बट हर प्रोनाउंसिएशन इज नॉट प्रॉपर। तो प्रभुपाद कहने लगे, बट हर रिनाउंसिएशन इज परफेक्ट। तो कहने लगे कि स्वामी जी, इनका जो बोली की जो शैली है वो सही ढंग से नहीं है। तो प्रभुपाद कहने लगे, मगर इनका विरक्ति परिपूर्ण है। तो भले ही उनके श्लोकों में, बोलियों में भले ही कैसे भी टूटिया हो, लेकिन उन्होंने अपने जीवन में पक्का उतार के रखी है। इस प्रकार दोनों गुणों को देखने के बाद भी उसके अंदर अच्छे गुणों को बड़े विस्तार से चर्चा करना। एक समय की बात थी, एक बार एक व्यक्ति था जो अपने घरे को बेचने के लिए बाजार में गया। तो बाजार में बहुत चिल्ला चिल्ला के कह रहा था, 80 रुपए में गधे को ले लो, 80 रुपए में गधे को ले लो। कोई ले नहीं। एक व्यक्ति आया और कहा, मैं लूंगा तो केवल 50 रुपए में दोगे? तो बहुत बार्गेनिंग कर उन्होंने 60 रुपए में दे दिया। अब जब 60 रुपए में दे दिया, और जब घर आया तो गधे को साथ में लेकर आया, तो पड़ोसी ने पूछा, अरे आप तो गधे को बेचने लेकर गए थे, गधे को वापस लेकर आए। ला क्या करूं, मैं गधे को बेचा 80 में, 60 में मैंने बेचा, लेकिन 100 में खरीद के लाया। अरे क्या बोल रहे हो, गधा कौन है ये के तुम हो, तो ऐसे क्यों? तो कहने लगे क्या करूं, जब मैंने गधे को 60 में बेच दिया तो जिसको बेचा उस व्यक्ति ने इस गधे के ऐसे गुण को गाए और कहने लगा इस गधे की क्या बोली है, सुंदर बोली है, इसके टांगे कितनी मजबूत है, लंबे लंबे चौड़े और पीठ तो ऐसा बुलंद है कि कितना भी वजन रखो तो भी उठा के खड़ी रहेगी। ऐसा सब उनके गुणों के विषय में सुनते सुनते मैं सोचा कि मैं गलत किया उसको 60 में बेच के और 100 में खरीद के ला दिया। तो उन्होंने उस गधे के गुणों को सुनकर वो सहमत हो गया। तो वैसे भक्तों के अंदर सद्गुणों को सुनते सुनते उनके प्रति जो विरक्ति है वही खत्म हो जाती है, ये उनके उनके प्रति जो द्वेष है वही खत्म हो जाती है। एक बार भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के पास दो शिष्य आए और दोनों जन एक दूसरे का कंप्लेन बता रहे थे। वो बता रहे थे कि इन्होंने ऐसे कि ये ऐसे है वो ऐसे है। तो सरस्वती ठाकुर ने दोनों को चुप कराकर कहा पहले व्यक्ति को, क्या तुम्हें इसके अंदर कोई अच्छे गुण को दिखता है? इन्होंने कहा हाँ, बताओ क्या है? तो कहने लगे ये तो रोज जप करता है, मृदंग अच्छा बजाता है और कीर्तन करता है। तो फिर इनसे पूछा कि तुम्हें इसमें कुछ अच्छे गुण दिख रहे? बोला अब इन्होंने कहा है तो ये बोलेंगे हाँ। तो बोला क्या क्या? भाई अच्छा प्रवचन देता है, अच्छा नृत्य करता है। अब इतना सब कहने के बाद दोनों के अंदर फिर पूछा अब दोनों के बीच में कौन सी गलती तुम्हें दिखाई पड़ रही है? और वाकई दोनों के अंदर का जो द्वेष था उसी क्षण खत्म हो गया। तब सरस्वती ठाकुर कहने लगे कि जब भी भक्तों को देखते हैं तो दूसरे भक्त के अंदर केवल अच्छे गुणों को देखना चाहिए। तो जब अच्छे गुणों को देखेंगे तो बुरे गुण अपने आप खत्म हो जाएंगे। सरस्वती ठाकुर जब 5 साल के थे तो उन्होंने गलती से आम खाने के लिए उन्होंने उठा लिया। तो हाल ही में सरस्वती ठाकुर का आविर्भाव दिवस किया इसलिए मैं कुछ उसमें से बता रहा हूं। तो भक्ति विनोद ठाकुर ने उनको फटकारे और कहने लगे अभी तक भगवान को भोग नहीं लगा और तुम आम खा रहे हो। उसी समय सरस्वती ठाकुर को इतना सगमा पहुंचा तो बिमला प्रसाद ने उसी दिन ने निर्णय ले लिया कि आज के बाद मैं आम कभी नहीं खाऊंगा। तो इसके विषय में भक्ति रसामृत महाराज बहुत सुंदर एक सीख बताते हैं कि इस विमला प्रसाद सरस्वती ठाकुर ने बचपन से इस बात को अपने जीवन में धारण कर लिया जो उन्होंने गलती किया। तो उन्होंने यह समझाया कि किस प्रकार भक्तों को अपने जीवन में जब भी कुछ गलती होती है तो उस गलती को जीवन भर तक नहीं भूलना चाहिए, जीवन पर्यंत तक उसे याद रखना चाहिए। और जब कोई व्यक्ति अच्छा कार्य हमारे लिए करता है तो उसे जीवन भर याद रखना चाहिए और साथ साथ में जब हमसे कुछ बुरा कार्य होता है तो उसे जीवन भर याद रखना चाहिए। और जब हम कुछ अच्छे कार्य किसी के लिए करते हैं तो उसको तुरंत भूल जाना चाहिए। और जब कोई दूसरा व्यक्ति हमारे प्रति अगर बुरा द्वेष या किसी प्रकार का कार्य करता है तो उसको तुरंत भूल जाना चाहिए। लेकिन हमारा ठीक इसका उल्टा होता है। जब हम कुछ अच्छे कार्य करते तो जीवन भर याद रखते हैं, मैंने इसके लिए इस जमाने में ये मदद किया था, तो भूल गया। और जब कोई दूसरा व्यक्ति कुछ गलत किया है तो जीवन भर याद रखते हैं, भूलूंगा नहीं मैं कभी। तो हमारी जो दृष्टि है वो ठीक इसका विपरीत हो जाता है। तो वैसे यहां पर ये जो 5वें गुण केवल अच्छे गुणों को देखना और 6ठे गुण सी लिटिल गुड बट मैग्निफाई लाइक एनीथिंग, थोड़े से अच्छे गुण को देखना लेकिन उसको बड़ा चढ़ाकर विस्तार से कहना। तो ये वाकई भगवान के अंदर इस गुण को देख सकते हैं। अजामिल ने जीवन भर तक पाप किया लेकिन अंतिम समय पर नारायण बोला, केवल चार अक्षर नारायण उच्चारण किया, जो कि जीवन भर उन्होंने पाप किया, तो उनके लिए तीन विष्णु दूध आए, और चार अक्षर बोला तो चार, जब उन्होंने जीवन भर पाप किया तो उनके लिए तीन यमदूत आए, और जब उन्होंने चार अक्षर बोला तो उनके लिए चार विष्णु दूध आ गए उनकी रक्षा के लिए। इसीलिए श्री प्रभुपाद कहते हैं कि अगर हम भी इसी प्रकार हरे कृष्ण महामंत्र अंतिम समय पर बोलेंगे 32 अक्षर का, तो 32 विष्णु दूध आ जाएंगे हमारी रक्षा के लिए। तो वैसे यहां पर भगवान के अंदर वो सद्गुण है, हमारे एक त्रायतो महतो व्यात स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य, थोड़ा सा अगर धार्मिक या भगवान के प्रति अगर कार्य करता है तो जीवन भर तक भगवान उसे याद रखते हैं। एक समय एक भक्त था, उनका यही पेशा था कि वो हमेशा भोजन करने के पहले बाहर जाकर आवाज लगाता, कोई भूखा है। वो ग्रस्त आश्रम को ठीक ठीक पालन करता था, एक ग्रस्त का एक नियम है कि भोजन करने के पहले बाहर जाकर जोर से आवाज लगाना, कोई भूखा है तो पहले आकर भोजन करो फिर हम खाएंगे। खैर कलयुग में तो संभव नहीं है, न तो लाइन लग जाएगा। तो उन्होंने जाकर आवाज लगाया और कहा कि कोई भूखा है, तो एक आ गया, बोला हाँ मैं भूखा हूं। तो यात्री था तो उनको बिठा दिया, भोजन खिलाया, हवा चामर वगैरह फेराते फेराते और साथ साथ में भगवान के गुणों को गाने लगे, भगवान कितना धन, भगवान कितने महान है, भगवान ने आज आपको भेज दिया ताकि मैं आपकी सेवा करूं, धन्य है। भोजन इत्यादि करने के बाद उन्होंने कहा ठीक है भोजन भोजन कराया वो सब ठीक है, लेकिन तुम क्या बीच बीच में भगवान भगवान बोल रहे हो, ये सब मुझे पसंद नहीं, ऐसे फटकार कर चला गया। तो इनको बाद में पता लगा ये तो नास्तिक नंबर एक निकला, तो इनको बहुत दुख होने लगा, अरे बाप रे मैंने किसी नास्तिक को आज भोजन खिला दिया। बहुत दुख से पीड़ित से परेशान था और इतना हैरान था कि भगवान स्वयं प्रकट हो गए। भगवान प्रकट होकर कहने लगे क्या बात है क्यों परेशान हो, तो इन्होंने कहा ये भगवान आज मैंने एक नास्तिक को भोजन खिलाया। तो भगवान कहने लगे तुमने तो आज खिलाया, मैं तो रोज सैकड़ों नास्तिक को खिलाता हूं। तो वैसे भगवान के अंदर वैसे सत दृष्टि है, और वो सद दृष्टि से भगवान किसी के अंदर थोड़े भी अगर सदगुण है तो उस गुणों को बड़े विस्तार से बताते हैं। एक समय एक पाप राजा जो कि अमरीश महाराज के भाई थे, तो पाप राजा जो था वो दिन भर नशे में चूर रहता था। तो अमरीश महाराज उनको बहुत लेक्चर वगैरह देते थे ये सब छोड़ो भगवान का भजन करो, लेकिन मानता ही नहीं था। तो इन्होंने नारद मुनि को आकर कहा कि कृपा करके आप आइए मेरे घर पर और मेरे भाई को थोड़ा काउंसलिंग करिए, ये मान ही नहीं रहा है। तो नारद मुनि ने कहा ठीक है मैं आता हूं। तो नारद मुनि को बुलाया अपने भाई को भक्त बनाने के लिए। तो नारद मुनि आए पाप राजा के पास, तो पाप राजा को कहा कि देखो आज के बाद ये सब नशा वगैरह छोड़ देना और आज से तुम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना। तो ये घूर के देखने लगा और घूर के देखने लगा, सीधा शराब का प्याला उठाया और भागा नारद मुनि के पीछे, और नारद मुनि भी भागे। अब ये पीछे भाग रहे और नारद मुनि आगे, और जान बचाकर भाग रहे। नारद मुनि भागते भागते ये बात कहा कि ठीक है मरने के बाद ये बात जरूर याद रखना, जब तुम यमराज के पास जाओगे तो ये प्रश्न जरूर पूछना, लव मात्र साधु संघ का क्या अर्थ है। और ऐसे कहकर वो निकल गया। और तब हुआ क्या, इनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु हो गई तो यमदूत लोग आए, यमराज के पास लेकर गए, वहां पर फैसला हुआ। तो यमराज ने पूछा कुछ अंतिम ख्वाहिश, तो इन्होंने कहा एक प्रश्न है, क्या लव मात्र साधु संघ का क्या अर्थ है, लव मात्र साधु संघ का क्या फल है। उन्होंने कहा ये तो बहुत लंबा जोड़ा है और पीछे लंबा लाइन भी खड़ा है, तो बेहतर है तुम ब्रह्मा जी के पास जाओ, जिन्होंने सृष्टि बनाया, जिन्होंने वेद हमें समझाया वही बताएगा। तो उनके पास लेकर गए, तो ब्रह्मा जी के पास लेकर गए, और ब्रह्मा जी के पास जतीन जमदूत और यहां पर ये पाप राजा, तो यम ब्रह्मा जी ने पूछा क्या क्या परेशानी यहां क्यों आए। बोला नहीं, इस व्यक्ति का, इस बंदा का एक प्रश्न है, और वो प्रश्न है कि लव मात्र साधु संघ का क्या फल है। तो ब्रह्मा जी भी हैरान हो गए, वो कहने लगे कि अब तो मैं मैनेजमेंट में बहुत व्यस्त हूं, बेहतर है कि शिव जी के पास जाओ, निठल्ले बैठे रहते 24 घंटा आंख मूंद कर, वही कुछ बताएंगे। तो हिमालय लेकर गए शिव जी के पास, तो शिव जी के पास लेकर गए और शिव जी को पूछा गया कि इनका एक प्रश्न है, क्या लव मात्र साधु संघ का क्या फल है। तो शिव जी भी कहने लगे अब तुम लोग इतने दूर तक आ गए, तो निकट में तो वैकुंठ है, वहीं जाकर नारायण से पूछ लो, वही बेहतर होगा, उससे बड़ा अच्छा उत्तर कौन देगा। तो वहीं लेकर गए और वहां पर लेकर जाकर जब नारायण, जो कि चारों तरफ उनके भक्तगण उनकी सेवा कर रहे हैं, ये दृश्य देखते ही यहां पर ये पाप राजा दंग रह गए, प्रणाम इत्यादि कर नारायण ने पूछा क्या बात है। तो यमदूतों ने कहा हमें यमराज ने भेजा है, पहले हम ब्रह्मा जी के पास गए, फिर शिव जी के पास गए, अब आए हैं आपके पास, अब इनका ये प्रश्न है कि लव मात्र साधु संघ का क्या फल है। तो नारायण ने कहा यद गतवाना निवर्तन दे, इनको छोड़ो बाकी सब चले जाओ। तो भगवान ने केवल उनके एक छोटे से सद्गुण को देखा और उनके जीवन भर के सारे गलती को क्षमा कर दिया। तो वैसे भगवान के अंदर वैसी दृष्टि है, जैसे चैतन्य चरितामृत में बताते हैं, जब एक मुसलमान व्यक्ति जब शौच क्रिया के लिए जब जंगल गया, तब उसी समय एक जंगली सुअर ने उस पर आक्रमण किया, और जिस आक्रमण से वो मरने ही वाला था, तो मरते समय वो हराम खोर बोल रहा था, लेकिन उसके पहले उसका प्राण चला गया, हराम बोला कि मर गया। तो हराम में राम आ गया और भगवान ने कहा मेरे नाम का जप किया, इसलिए उसको मुक्ति दे दिया। तो वैसे केवल एक प्रभु राम का नाम अगर कोई जप करता है, तो जीवन पर्यंत तक के सारे पाप, केवल इस जन्म के नहीं कोटि कोटि जन्म के सारे पाप को अगर एक तराजू में रख दिया जाए, दूसरे तराजू में एक राम को रख दिया जाए, तत्पर भी जिस तराजू में राम का नाम है उसका पल्ला भारी रहेगा। और वैसे भगवान इतने दया दयालु हैं, इसलिए कहा गया है श्रीमद् भागवतम में वर्णन आता है, प्रभुपाद इसके तात्पर्य में लिखते हैं, जब उस समय जब कृष्ण ने अपने मुख को खोल के यशोदा मैया को पूरा ब्रह्मांड का दर्शन कराया, तो वहां पर श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि पूरे ब्रह्मांड को एक छोटे से मुख मंडल के अंदर कृष्ण ने दर्शन कराया। उसी प्रकार कृष्ण का अर्थ क्या है, कृष यानी कि कंप्रेस, सबको छोटे रूप में बंद कर देना। आजकल का एडवांस टेक्नोलॉजी यही है, सब कुछ एक छोटे से पेन ड्राइव में पूरा डेटा आ जाता है, या आईपॉड में बहुत सारे लेक्चर आ जाते हैं कई घंटों के। वैसे ही कृष्ण क्या करते हैं, कृष यानी कि हमारे जन्म जन्मांतर के सारे पाप को एक छोटा सा राई जैसा बना देते हैं, ना यानी कि उड़ा देते हैं। कृष न बोलने से उनके जन्म जन्मांतर के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तो वैसे भगवान के अंदर ऐसे सद दृष्टि है, और केवल जीव के कल्याण के विषय में ही सोचते हैं। इस प्रकार ये जो सद्गुण सुखदेव गोस्वामी ने कृष्ण के अंदर दर्शन किया, आई थी पुतना कृष्ण को जहर देकर मारने के लिए, मगर कृष्ण ने क्या विचार किया, ये महिला मुझे स्तनपान करा रही है, यानी कि ये मेरी माता है, और माता समझकर जबकि उन्होंने जहर भी पिलाया तो भी कृष्ण ने उस जहर के ऑफरिंग को भी स्वीकार किया और उन्हें मां का दर्जा दिया। और इस प्रकार कृष्ण अपने इस सद्गुणों से शिक्षा दे रहे हैं कि किस प्रकार हमें हर व्यक्ति के अंदर थोड़ा सा भी अगर सद्गुण है तो उसी को ही बड़ा चढ़ाकर देखना चाहिए। तो ये हमारे छह दृष्टि है जिसको हमने बारी बारी से चर्चा की है। तो इसके अंदर किसी को कुछ प्रश्न, कोई जिज्ञासा है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे जस प्रभु जी, माइक चाहिए। तो आप लोग को प्रश्न समझ में आया? बहुत लॉजिकल प्रश्न है। प्रश्न यह है कि अगर एक राम या एक कृष्ण बोलने से हमारे जन्म जन्मांतर के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं तो भगवान ने हमें 16 माला क्यों बताया, प्रभुपाद ने हमें 16 माला क्यों बोला, और रोज 16 माला करने की क्या जरूरत है, एक बार कृष्ण सैकड़ों बार बोल दिया, अभी आगे क्यों जप करना है। तो अजामिल ने नारायण का नाम लिया, नारायण बोलने से उनको मोक्ष मिला। मोक्ष किस में मिला? यमदूतों के चुंगल से उसे मुक्ति मिला, और यमदूतों के चुंगल से मुक्ति मिलने के बाद उन्होंने साधना के लिए वो वहां से हरिद्वार निकल गए। तो हरिद्वार में जाकर अजामिल ने साधन भक्ति किया, और साधन भक्ति से उन्होंने अपने आप को पूरी तरह शुद्ध किया। प्रसाद सबको मिलेगा, जरा दो मिनट रुक सकते हैं तो सबको घर जाना घाई है लगता है। तो भले ही कृष्ण के नाम से हमारे पाप कट जाते हैं, लेकिन पाप करने की प्रवृत्ति को खत्म करने के लिए हमें साधन भक्ति को करना पड़ता है। तो एक है हरे कृष्ण, कृष्ण बोलने से पाप तो कट गए लेकिन पाप करने की प्रवृत्ति अभी भी हृदय में है, तो उसको कैसे करेंगे खत्म? उसको हमें रोज सुबह शाम कीर्तनीय सदा हरि, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र को अगर हम निरंतर जप करेंगे तो पाप करने की जो प्रवृत्ति है वो हमारी नष्ट हो जाएगी। और वही अजामिल ने अंतिम समय पर अपने जीवन को इस प्रकार साधन कर परिपक्व होकर वो भगवान के धाम में एंट्री मारे, और भगवान तभी एंट्री देते हैं, नहीं तो नहीं। ठीक है, और कुछ? थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की।
हरे कृष्णा। प्रभु जी कम से कम इनका आभार तो व्यक्त करते जाइए। तो बहुत बहुत धन्यवाद हिजग्रेस शुद्ध सेवक प्रभु का, जिन्होंने दृष्टि जैसी सृष्टि या हमारी दृष्टियों पर प्रकाश डाला, हम उनका आभार व्यक्त करेंगे हरे कृष्ण महामंत्र द्वारा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आते रविवार को प्रसाद बनाने और वितरण करने की सेवा अचिंत्य चक्र प्रभु और कृष्ण मेघा प्रभु के काउंसलिंग ग्रुप द्वारा होगी। आप सबको मालूम है ये काउंसलिंग सिस्टम मंदिर से चलता है। जो भी भक्त मंदिर में सेवा करना चाहते हैं या आगे चलकर दीक्षा लेना चाहते हैं, हरिनाम दीक्षा, ब्राह्मण दीक्षा, तो उनको चाहिए कि वे अपने क्षेत्र में चलने वाले काउंसलिंग को अटेंड करें। इसके द्वारा आपको सेवा भी मिलेगी, हरिनाम दीक्षा और ब्राह्मण दीक्षा जो भी मंदिर की एक्टिविटीज में सम्मिलित होने के लिए सभी को काउंसलिंग सिस्टम में जाना बहुत आवश्यक है। और हर क्षेत्र में रहने वाले भक्तों के लिए हर क्षेत्र में काउंसलिंग होता है, बॉम्बे से लगाकर विरार तक। तो आप इसकी जानकारी आप स्थानीय भक्तों से ले सकते हैं और काउंसलिंग अटेंड कर सकते हैं। तो ये जो आते रविवार को सेवा होगी वो अचिंत्य चक्र प्रभु और कृष्ण मेगा प्रभु के काउंसिल ग्रुप में जो भी भक्त आते हैं उनके द्वारा की जाएगी। इसके साथ साथ एक बहुत सुंदर सूचना है, ये पंच बद्री पंच प्रयाग यात्रा 2 जून से 11 जून तक ये यात्रा मंदिर से निकलने वाली है। तो जो भी इस यात्रा को करने के इच्छुक हैं कृपा करके वे इस टेम्पलेट को लेकर पूरा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये टेम्पलेट अभी वहाँ रखा जाएगा या यहाँ से भी आप प्राप्त कर सकते हैं। 2 जून से 11 जून तक बद्री पंच बद्री और पंच प्रयाग यात्रा है इसी वर्ष में। जो भी जाने के इच्छुक हैं कृपा करके ये टेम्पलेट प्राप्त कर लें। और आज ही ठीक 3 बजे से बसई में रथ यात्रा है और रथ यात्रा के बाद सभी के लिए वहाँ प्रसाद का भी व्यवस्था है। ये रथ यात्रा प्रारंभ होगा वसई वेस्ट क्रिकेट क्रीड़ा ग्राउंड है, स्टेशन के पास में ही है वेस्ट में, वहाँ से रथ यात्रा प्रारंभ होगा और वापस वहीं पूर्णाहुति होगा। तो आप इस रथ यात्रा में भी जा सकते हैं। हरे कृष्ण। अभी सभी के लिए प्रसाद है, प्रसाद का स्तुति।
महाप्रसाद गोविंद सागरे
Gracias.